विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। एमए हिंदी शिक्षण क्रम में हम व्यावसायिक वर्ग भाषा प्रौद्योगिकी इसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस कोर्स की जो किताबें हैं वो किताबें तैयार होने तक आपको इस कोर्स का पूरा अध्यापन वीडियो ऑडियो ये जो आजकल सशक्त माध्यम है उसके जरिए करना है। इस क्षेत्र में भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अधिकारी व्यक्ति डॉक्टर सुनील कुमार लौटे जी, इनको हमने आमंत्रित किया हुआ है। डॉक्टर लौटे कोल्हापुर के महावीर कॉलेज में प्राचार्य रह चुके हैं और हिंदी विषय में उनकी बहुत सी किताबें प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा न केवल साहित्य या उपन्यास में बंधित है बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए उसे बाहर कैसे निकाला जाए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसका प्रयास भी लौटे सर करते हैं। और इसका प्रमाण है कि उन्होंने खुद किताब इस विषय में लिखी हुई है और वो किताब हिंदी के अध्यापक और विद्यार्थी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। भाषा प्रौद्योगिकी ये जो विषय है ये एक नया विषय है। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं कि जो अभी खत्म होने के कगार पर है, जैसे कि आदिवासियों की भाषा, खानदेशी भाषा, गांव-गांव जाते हैं तब भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं। ऐसे हाल में अगर हिंदी को ना केवल राष्ट्रभाषा बनानी हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का जो महत्व है वो बना रहे, ना केवल बना रहे बिल्कुल यानी बढ़ता जाए, इसलिए बहुत कोशिश करने की जरूरत है और उसके लिए हमें तंत्र ज्ञान का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। हिंदी का जो प्रौद्योगिकी है उसमें हम किस तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए या एप्स के जरिए हिंदी का ऐसा संस्करण भाषा का जिसमें व्याकरण भी हो किस तरह से लिखा जाए वो भी हो, अगर इसमें हम कुछ विकास करें तो हिंदी ना केवल किताबों में रहेगी बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हिंदी सीखने की इच्छा है, जो बोलना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सहज होगा। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ेंगे कि जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिंदी पहुंच जाएगी और वो हिंदी का अच्छी तरह से शास्त्रीयता के आधार पर उसका उपयोग कर सकेंगे। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में और ताकि ये नया विषय है इसके लिए हमें जो एक्सपर्ट या तज्ञ चाहिए वो केवल साहित्य के बारे में जानने वाले ना हो, भाषा के बारे में जानने वाले ना हो, बल्कि जिन्होंने कुछ इसमें प्रयोग किए हुए हो, अनुसंधान किए हुए हो, ऐसे व्यक्ति की आज जरूरत है। और यही दृष्टिकोण अपने एमए के विद्यार्थियों में के मन में पैदा करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कल आप भी अपने कंप्यूटर पर बैठे किसी पुरानी किताब को लेकर हिंदी में किस तरह से अभी जैसे के खड़े बोली में राम काव्य, ये बहुत पुरानी किताब है, उसपे कई अनुसंधान हुए हैं लेकिन उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, करके वो लोगों के सामने नहीं आ रहा है। तो इस विषय को पढ़ के ऐसा हो सकता है कि आपके मन में इसके बारे में रुचि पैदा हो और आप खुद प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें कुछ ऑडियो या वीडियो बनाए, कुछ एनिमेशन बनाए और यह विषय खड़ी बोली में राम काव्य ये विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिल्कुल थोड़े खर्चे में लोगों तक पहुंचाए। तो हमारी यही इच्छा है कि आप इस विषय में रुचि लें, इसके बारे में हमारी जो एक्सपर्ट है सुनील कुमार जी लौटे उनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले। और लवटे सर ने इस विषय के चारों टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से उनका लेक्चर जो है वो तैयार किया हुआ है। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि इसकी किताबें आपको अभी नहीं मिलने वाली है, करके आप इस जो लेक्चर सही है उसको बड़े ध्यान से सुने, आप उसके नोट्स निकालिए। आपके कुछ सवाल है तो कृपा करके हमें वेबसाइट के जरिए, जो स्टूडेंट्स फोरम रहता है उसके जरिए हमें भेजे। आपके सवाल हम लवटे सर जी के तक पहुंचाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लवटे जी, जिनको विद्यार्थियों से बड़ा प्यार है, वो तुरंत आपके सवाल का जवाब भी देंगे और इस तरह का ये अध्ययन आपका होगा। मैं सुनील कुमार लवटे जी का स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि भाषा प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है ये, और उसके साथ में भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप, उद्देश्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और किन कठिनाइयों का सामना भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी है तो आप इस्तेमाल करते जाओगे, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आने वाली है, कुछ अड़चने आने वाली है और इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से इन कठिनाइयों का सामना करके हमको हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना है। मैं लवटे सर का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर।
मेरे प्रिय छात्रों, हम आज के इस व्याख्यान में भाषा प्रौद्योगिकी पर विचार करने जा रहे हैं। हमारे इस प्रश्न पत्र का शीर्षक ही भाषा प्रौद्योगिकी है। भाषा प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 21वीं सदी में जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके विभिन्न अप्लाइड या अनुप्रयुक्त उपयोग की बात करते हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब भी हम प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भाषा का ऐसा इस्तेमाल करना जो संगणक की विभिन्न प्रणालियों के जरिए हो। संक्षेप में मैं यदि आपको बताऊं कि भाषा प्रौद्योगिकी क्या है, तो उसका ये अर्थ है कि हमारे जितने भी भाषिक व्यवहार हैं, उन तमाम भाषिक व्यवहारों को संगणक से जोड़कर व करना भाषा का तांत्रिक प्रयोग है। आज की तारीख में जैसे उद्योगों का विकास हो गया, वैसे तंत्र ज्ञान का भी ऐसा विकास हुआ है कि हमारी कोई कृति संगणक से अस्पर्शित नहीं रही। हमारा भारतवर्ष दोस्तों एक वरदान लेकर आया है। एक दुनिया में ऐसे दो देश मुझे मालूम है कि जो अपनी भाषा विभिन्नता के लिए परिचित है, एक है रूस और दूसरा है भारत। रूस फिर भी आज अलग अलग राष्ट्रों में बट गया है। दुनिया का आज भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जो अपनी भाषा विभिन्नता को लेकर विकसित हो रहा है। और दोस्तों सिर्फ बात भाषा की नहीं है, हमारे भारतवर्ष में किन किन बातों की विभिन्नता है ये देखने का भी यदि हम प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में भाषा की विभिन्नता कितनी है। अकेले हमारे संविधान में हमारे प्रांतों की जो अलग अलग भाषा है जिनको हमने राजभाषा का ओहदा दिया, ऐसी 22 भाषाएं हमारे संविधान में दर्ज है कि जिनके विकास की संवैधानिक जिम्मेदारी उन प्रांतों पर है और केंद्र शासन पर भी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आजादी के पिछले 67-68 वर्षों में भी हमने अपनी भाषाओं के विकास को लेकर जो एक तरक्की और तंदुरुस्ती की सोच रखनी चाहिए थी, वह न रखने के कारण दोस्तों हमारी भाषा कागज में ही अटक गई है, जबकि दुनिया की सारी भाषाएं पेपरलेस बन गई, ऑनलाइन बन गई। एक छोटे छोटे देशों की भाषा ने संगणक प्रणाली में जितना विकास किया, वो देखकर ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी आबादी को लेकर हम इस पर सोचते क्यों नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है, मराठी है, बांग्ला है, गुजराती है, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, उर्दू, असमिया, डोंगरी, संथाली, अंग्रेजी, नेपाली जैसी कितनी भाषा है। और आप जानते हो हमारे पास सिर्फ भाषा वैविध्य नहीं है, हमारी अनेकानेक भाषाएं अनेकानेक लिपियों का प्रयोग करती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि बांग्ला की अपनी लिपि है, उड़िया की अपनी लिपि है, नेपाली की अपनी है, कन्नड़ा की अपनी है, जितनी भाषाएं उतनी लिपियां हैं। ये जरूर है कि उस लिपि पर देवनागरी और ब्रह्मी का एक सार्वत्रिक प्रभाव है। जैसे भाषाओं पर भी हम देखते हैं कि हमारी जो विभिन्न भाषाएं हैं उस पर संस्कृत प्राकृत का गहरा प्रभाव है। यानी एक तरफ भारत में भाषा और लिपि का वैविध्य है और दूसरी तरफ आप देखा करेंगे कि भाषा और लिपि में अंतः संबंध भी है। अंतः संबंध कैसे है मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे भाषा विज्ञान में हम भाषाओं को लेकर तरह तरह के परिवार की बात करते हैं कि हमारी उत्तर की सारी भाषाएं हैं जिनको हम आर्य परिवार की भाषा कहा करते हैं, दक्षिण की जो भाषा है उनको हम द्रविड़ी भाषा कहा करते हैं, उधर ईशान्य दिशा में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाओगे तो वहां की भाषाओं का उत्साह और एक आपको दिखाई देगा, इधर पाकिस्तान की ओर पेशावर की ओर जाएंगे तो भाषा का एक नया उत्साह आपको दिखाई देगा। तो हमारी भाषाओं के निर्माण के जो कारण है वो प्रादेशिक है, ऐतिहासिक है, भौगोलिक है और हमारे देश में समय समय पर जो लोग आ गए। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में आज जितने वंश हैं, भारत में आज जितनी जातियां हैं, आप बुरा मत मानिए कि इसमें से एक भी जाति और वंश यहां का नहीं है। हम सारे के सारे लोग स्थानांतरित होकर दूसरे देश से, दूसरी संस्कृति से यहां आए हुए हैं। कि हमारे देश में समय समय पर हूण आए, कुषाण आए, नाग आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए। मैं तो ये कहता हूं कभी कभी भारत की इस विविधता को देखकर कि भारत में न आने वाला आलसी, भारत में किस प्रांत और वंश और राष्ट्र के लोग नहीं आए और ये लोग आ गए किसी द्वीप और जंगलों में जाकर नहीं रहे। उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति बसाई, संस्कृति का विकास किया। ये भारतवर्ष में दोस्तों एक गलत फहमी है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं कि ये मात्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां यवन आए, यहां ईसाई आए, यहां बुद्ध आए, यहां जैन आए। धर्मों की विविधता है, दर्शन की विविधता है, वंश की विविधता है, भाषा की विविधता है और इससे जोड़कर संस्कृति की भी विभिन्नता है। ये जो सारी तरह तरह की हमारी विभिन्नताएं और विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के कारण हो क्या गया कि हमारी सारी भाषाएं अपनी अपनी परंपरा, अपने अपना व्याकरण, अपने अपने मातृकाएं जिसको हम स्वर और व्यंजन और शब्द कहा करते हैं, इन सब को लेकर हम विकसित होते गए हैं। और यही कारण है कि इस विभिन्नताओं में एकता लाने के लिए हमें आज काम करना चाहिए। परवर्ती काल में, पूर्व काल में हमने ऐसा देखा कि हमारे पास दो संस्थाएं हैं, एक है साहित्य अकादमी और दूसरी नेशनल बुक ट्रस्ट या भारतीय ज्ञानपीठ। इन संस्थाओं ने हमारी भारतीय भाषाओं में एकता लाने का अपने अपने ढंग से प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास करने पर भी आपको दिखाई देगा कि हमारी भाषाएं अलग अलग रूप से विकसित हो रही। हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी का क्षितिज जो मैं देख रहा हूं, उस भाषा प्रौद्योगिकी में आने वाले जमाने में यदि हम सुचारू रूप से काम करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का एक चरित्र बनेगा, भारतीय साहित्य की अपनी विशेषता उभर आएगी। आज हम अलग अलग द्वीप पर बैठकर जी रहे हैं। एक देश बनाने के लिए दोस्तों जरूरी है हमारे पास एक भाषा हो, एक साहित्य हो, एक संस्कृति हो, तब जाकर कोई देश एकात और सदा हुआ बन सकता है। और मेरी दृष्टि से ये हमारी भाषा प्रौद्योगिकी के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में ये जो एक विविधता है, संस्कृत में किसी समय भारत का वर्णन किया जाता था दोस्तों अविभक्तम विभक्तेषु, कि हमारे यहां विभिन्नता जरूर है, विभिन्नता के होते हुए भी हम अपने आप को एक मानते हैं। ये हमारे भारत की अखंडता, प्रभुता, प्रभुसत्ता, उसका यदि कोई रहस्य है तो संविधान तो जरूर है, लेकिन हमारे सांस्कृतिक अंतःसंबंधों ने कितने आक्रमण आए दोस्तों हम पर। क्या आक्रमणों से कभी हम विचलित हुए? कभी हमें ऐसा लगा कि कोई तमिलनाडु में रहने वाला भाई मेरा नहीं है? कभी हमें ऐसा लगा कि कश्मीरी हमारे नहीं है? ये जो एक अपनापन है, मतभेदों के बावजूद भी अपनत्व नाम की जो चीज भारत में बसी हुई है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारा बल है, ये हमारी ताकत है। इसके बलबूते पर भारतवर्ष खड़ा है। तो उसको देखते हुए आने वाले दिनों में हमें भाषा प्रौद्योगिकी पर यदि हम सोचेंगे तो हो सकता है कि भारत आज की तुलना में भविष्य में ज्यादा मजबूत बनेगा, और मेरी उम्मीद है कि वह जरूर बनेगा। आप जानते हो कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, संविधानिक जरूर है, लेकिन बोलियों को गिनेंगे तो करीबन 1650 बोलियां आज भी जिंदा है। दुनिया में बोलियां मर रही है, भाषाएं खत्म हो रही है, जबकि हमारे पास, हमने अपनी पारंपरिकता को जो बचाया उसके कारण हमने बोलियों को भी जिंदा बनाया। आने वाले दिनों में बोलियों पर भी हमें काम करना है। वर्तमान युग में हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े भाषा वैज्ञानिक है, हमारे मित्र है डॉक्टर गणेश देवी, वे इस काम में लगे हुए हैं। काम क्या है उनका, फिक्र क्या है उनकी? अरे भाषा को बचाकर रखो। मराठी हमारी मातृभाषा है ना, आप जानते हैं कि अहिरणी खत्म हो रही, कोंकणी खत्म हो रही, और खत्म क्यों हो रही? हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम छोड़ रहे हैं। अब नासिक में आप रहते हैं ना, आपके पड़ोस में नंदुरबार में जाओ, धुलिया में जाओ, कहीं जाओ तो आपको दिखाई देगा कि अपने अपने परिवेश में, आप जहां भी रहते हो अपने परिवेश में जो भी बोलियां हैं अपनी 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 भाषाओं की, सातारी है, कोल्हापुरी है, पुणेरी है, बम्बईया हिंदी है, ये सारी बोली भाषाओं की जो शक्तियां हैं ना, आज दुनिया इसी मानती है कि जो अपनी भाषा को बचाकर रखेगा वही बच पाएगा। नहीं तो सबका अमरीकीकरण, सबका अंग्रेजीकरण तय है। यदि हम अमरीका के चंगुल से बचना चाहते हैं, यदि हम अंग्रेजी के चंगुल से बचना चाहते हैं, ये बात सिर्फ बचने की नहीं है दोस्तों, ये बचाने की भी बात है। हमें अपनी भाषा, अपनी जहन को बचाना है, और इसलिए दोस्तों हिंदी भाषा की प्रौद्योगिकी का जो विचार है, हमारा प्राथमिक विचार है, इस पर हमें गौर करना इसलिए चाहिए कि आज लोग ऐसा मानते हैं कि जो अपनी भाषा में तंत्र ज्ञान का प्रयोग करेगा वही भाषाएं विकसित होगी। इसका कारण यह है कि हमारा जीवन बड़ा पस्त बनता जा रहा है दिनों दिन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पुरानी पीढ़ी मेरे पहले की पीढ़ी बहुत पढ़ा करती थी, उसकी तुलना में मैं बहुत कम पढ़ता हूं, मेरी तुलना में आप बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि मेरे और आपके ज्ञान में कोई अंतर है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आप युवा पीढ़ी के लोग हैं, आपकी समझ, आपकी दरोमदार, आपकी जो भलमनसाहत है, आपके ज्ञान का जो क्षेत्र है वह हमारी तुलना में अत्यंत व्यापक। एक छोटी बात को मैं समझा दूंगा कि हमारे पास मोबाइल होता है, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। मैं दावे के साथ आपको बताता हूं कि मेरे मोबाइल का प्रयोग मैं इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए करता हूं, आप उसका प्रयोग कितने ढंग से करते हैं, व्हाट्सएप पर जाते हैं, किसी से संवाद करते हैं, किसी को SMS करते हैं, किसी को मिस कॉल देते हैं। आपके बेटे होंगे, पोते होंगे, जो मेरे पोते की उम्र के पीढ़ी है, वो तो देखो वो तो हमसे भी माहिर है। वे तो जिस तरह से वीडियो गेम खेलते हैं, जिस तरह से संगणक को, टीवी को और मोबाइल को उन्होंने खिलौना बना दिया ना, उनके उस खिलौने बनाने की बात क्या है मालूम है कि वे भाषा प्रौद्योगिकी के सबसे सशक्त संवाहक है। आने वाले दिनों में हमारे लक्ष्य होना चाहिए कि भारतवर्ष का हर नागरिक भाषा प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता हो, भाषा प्रौद्योगिकी का वह प्रयोग करता हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य जब तक हम निर्धारित नहीं करेंगे, हमारी भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप हम तय नहीं कर पाएंगे। हमारे यहां दिक्कतें बहुत है दोस्तों, हमें हरेक भाषा के लिए अपनी अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा, क्योंकि हमारी हरेक भाषा की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपनी अपनी परंपराएं, उनको तो बचाकर रखना है और बचाकर रखते रखते आदान प्रदान में भी काम करना है। माने एक मराठी भाषी मैं हूं, भारत के सभी लोगों को एक वरदान है दोस्तों। वो वरदान क्या है मालूम है कि भारत का कोई भी नागरिक एक भाषी नहीं रहता। जैसे मैं कभी यूरोप में जाता हूं, जर्मन में जाता हूं, तो जर्मन में जर्मनी को छोड़कर लोग कोई भाषा ही नहीं जानते। मैं जापान गया था, मैंने देखा वो जापानी छोड़कर वो जापानी जानते ही नहीं। फ्रेंच में गया था, फ्रेंच छोड़कर वो जानते ही नहीं। अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जहां तक रोजमर्रा के व्यवहार की बात है वे अपनी भाषा में अटके रहते हैं तरक्की के बावजूद भी। जबकि हमारा हर नागरिक कम से कम त्रिभाषी होता है। एक वो अपनी मातृभाषा बोलता है, वो उसके घर में होती है, वो जब अपने घर में घर से लांगता है, अपनी दहलीज को लांगता है और समाज में जाता है, तो बाजार मंडी में जाकर उसको हिंदी बोलनी पड़ती, रिक्शा वाले से वास्ता होता है, टैक्सी वाले से वास्ता होता है। अंग्रेजी के पहले उसको हिंदी आनी चाहिए। और फिर वो उच्च शिक्षा लेता है तो उसको पता चलता है कि अरे दुनिया को समेटना है तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। औसत आदमी भारत का त्रैभाषिक होता है, ये वरदान है दोस्तों। लेकिन इस वरदान से एक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी सारी भाषाई व्यवहार को कम से कम त्रैभाषिक जब तक नहीं करते तब तक सार्वत्रिक नहीं होते। मेरे जैसा अध्यापक ज्यादा प्रचारित और प्रसारित क्यों है? तो मैं अंग्रेजी ठीक तरह से बोल लिख सकता हूं, मैं हिंदी ठीक तरह से बोल लिख सकता हूं, मैं मराठी ठीक तरह से बोल लिख सकता हूं। ये बहुभाषी कौशल्य 21वीं सदी का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। विदेशी लोगों को ताज्जुब होता है कि अरे तुम्हें इतनी भाषा आती है, हमें एक भी भाषा ठीक ढंग से नहीं आती। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारत में हम ऐसे ऐप भविष्य में खोजेंगे, जैसे कि हमारे कोश है, देखो हमारे पास कोश थे, बहुभाषी कोश। हमारे महाराष्ट्र के बड़े एक भाषा वैज्ञानिक थे, जब हमारे संविधान में 18 राजभाषाएं थी तो नरवणे साहब ने एक कोश बनाया था। क्या कोश बनाया था? एक वाक्य उन्होंने हिंदी का लिया था। बहुत सारी बातें उन्होंने उस कोश में रखी है कि मैं गांव जा रहा हूं, एक वाक्य हिंदी का। उस कोश में मैं गांव जा रहा हूं इस वाक्य के 18 पर्याय उन्होंने अगले वाले पन्ने में लिख दिए थे। तो कन्नड़ में मैं गांव जा रहा हूं क्या होता है, असमिया में क्या होता है, बोडो में क्या होता है, संथाली में क्या होता है। तो ये हमारी आवश्यकता है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो अपने आप को विदेशी अनुभव करते हैं, गुजरात में जाते हैं तो अपने आप को विदेशी अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस भाषा को ग्रहण करने, समझने, बोलने की क्षमता नहीं होती, हम अपने आप को पराया अनुभव करते हैं। यदि भारतीयों को ये परायापन हटाना है तो ऐसे ऐसे ऐप उसको खोज निकालनी चाहिए कि मराठी का रूपांतरण हिंदी में कैसा हो, हिंदी का रूपांतरण कन्नड़ा में कैसा हो, कन्नड़ का रूपांतरण असमिया में कैसा हो। आज की तारीख में असमिया आदमी हिंदी जानना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है, तो उसके पास कोई ऐप नहीं है, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में सिर्फ डिक्शनरी आती है लेकिन भाषा सीखने के ऐप नहीं है। दुनिया की छोटी छोटी भाषाओं ने अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु करोड़ों रुपए लगा दिए। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कभी आप चीनी बनावट की कोई चीज खरीदें, उसके अंदर एक प्रॉस्पेक्ट रखा रहता है। आप देखा करेंगे वो चीनी निर्माता है ना, वो अपने किसी गैजेट या वस्तु की जानकारी देने के लिए कितनी सारी भाषाओं का प्रयोग करता है। कम से कम दर्जनों भाषाओं का प्रॉस्पेक्टस वो आपको देता है, जापानी में देता है, हिंदी में देता है, अंग्रेजी में देता है, डच में देता है, स्पेन में देता है। दुनिया की जो मशहूर भाषा है उनमें वो अपने सारे गैजेट की, अपनी सारी वस्तु की, अपने उपकरण की जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्रॉस्पेक्ट जब तक मैं नहीं दूंगा मेरे ग्राहक नहीं बढ़ेंगे। तो उस दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा कि हम यदि हिंदी को विश्व भाषा बनाने का सपना देखते हैं तो आपके सामने ये चुनौती है और ये आपका लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करें कि कैनेडियन आदमी को हिंदी कैसे पढ़ाई जाए। आप जानते हैं हिंदी का क्षितिज कितना विशाल है। अभी परसों ही मैं गया था दोस्तों भोपाल में, पिछले ही महीने गया था भोपाल में, एक 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया था 10-11-12 तारीख को। कितने देश के लोग जो हिंदी पढ़ते पढ़ाते हैं आए थे मालूम है? 125 देश के अध्येता छात्र आए थे। और तब हमें पता चला कि अरे दुनिया के 100-150 देशों में, वहां के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। वो शिकायत क्या कर रहे थे कि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समान पाठ्यक्रम नहीं, हमारे पास हिंदी सॉफ्टवेयर नहीं, हमारे पास व्याकरण का सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास शब्दकोशों का, ई शब्दकोशों का भंडारण नहीं है, हम अपनी भाषा में उसका अनुवाद नहीं कर सकते, शब्द संपदा हमारी सीमित है। ये उनकी शिकायतें नहीं है, ये भाषा प्रौद्योगिकी की आने वाली संभावना है। इनको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे हिंदी विश्व भाषा कैसी बनेगी, ज्ञान भाषा कैसी बनेगी? ये सारी जो नई नई संभावनाओं का इजहार हम अनुभव कर रहे हैं, इसके आधार पर आने वाले दिनों में हमें अपनी भाषा प्रौद्योगिकी की रचना करनी होगी, तब जाकर हम अपनी भाषा का विकास कर पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मराठी में अखबार निकलते हैं, मराठी के सारे अखबार वाले लोग बड़े जोर शोर से ये कहते हैं कि हमारे अखबार के इतने पाठक हैं, और पाठकों की संख्या क्या होती है, एक लाख, दो लाख, तीन लाख, इससे बढ़कर मराठी पाठकों की संख्या नहीं होती। जबकि हिंदी का पाठक देखो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अंग्रेजी का पाठक देखो 50 लाख। तो ये जो उपभोक्ताओं की परिसीमा है, इस परिसीमा का अंदाज यदि हम लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं कि जहां हिंदी का प्रयोग नहीं है। हर देश में आपको हिंदी भाषी मिलेंगे, हर देश में हिंदी पढ़ने वालों की तादाद आपको मिलेगी। उनको यदि आपको हिंदी समझाना है तो आपके पास व्याकरण पढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर होने चाहिए, भाषा पढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर होने चाहिए। कलोकल हिंदी, अंग्रेजी कलोकल क्यों हो गई, अंग्रेजी का सबसे ज्यादा प्रचार क्यों हो गया मालूम है? इसलिए नहीं कि उनके पास विकिपीडिया है, इसलिए नहीं कि उनके पास शेक्सपियर है, उन्होंने कलोकल प्रोग्राम इतने बनाए हैं। मैं एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा। उनका एक प्रोग्राम है कॉन्वर्सेशन इन मार्केट, कॉन्वर्सेशन इन रेलवे स्टेशन, कॉन्वर्सेशन इन कॉलेज, ढेर सारे प्रोग्राम है, कॉन्वर्सेशन इन ब्यूटी पार्लर। आप कभी सोचते हैं कि इतनी छोटी छोटी कार्यविधि के लिए लोगों ने संगणकीय कार्यक्रम बनाए हैं और हम प्राथमिक रूप से भी इस पर गौर नहीं करते हैं? ये हमारी दोस्तों कमजोरी है। तो इसलिए मैं आपको, जब हम भाषा प्रौद्योगिकी के स्वरूप को समझ लेने का प्रयास करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे सामने चुनौतियां क्या है, क्या क्या हमें करने की योजना भविष्य में बनानी है। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि हमारी अंतर्देशीय, जिसको हम अंतर्भारतीय कहते हैं, देश के अंतर्गत हमारे जितने सारे प्रांत हैं उनमें आदान प्रदान को गतिशील करना एक हमारी चुनौती है, और दूसरे विश्व के देशों के साथ आदान प्रदान करना। तो इस दोहरी स्थिति में हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, एक अंतर्भारतीय सॉफ्टवेयर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर। फिर जो मैंने लिपि की बात बताई, जैसे हमारे यहां लिपियों की विविधता है, दुनिया में भी लिपियों की विविधता है, कोरिया की लिपि, चीन की लिपि, जापानी लिपि, वो चित्र लिपि है, उनमें भी एक तरह का साम्य है। लेकिन साम्य के बावजूद जो वैभिन्न है उसको देखकर हमें अपने लिपि संबंधी मुद्राक्षर परिवर्तन के जो प्रोग्राम होते हैं या लिप्यंतरण के जो प्रोग्राम होते हैं उनको बनाना आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज गूगल पर आप हिंदी अनुवाद देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजिन पर अनुवाद देखते हैं, या किसी छोटे मोटे संगणकीय कार्यक्रमों में, ऐप्स में आप जिस तरह की हिंदी का अनुभव करते हैं वह कोई परिनिष्ठित, शुद्ध और प्रामाणिक हिंदी नहीं है। एक तरफ प्रचार प्रसार हमें सुबोध करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना हो, भले वो परिनिष्ठित न हो लेकिन शुद्ध जरूर हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह से सुबोध अनुवादों का ऐप हम विकसित करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी भाषा प्रौद्योगिकी फूलेगी फलेगी। फिर है, लोग बताते हैं कि ये जो अनुवाद का जो शास्त्र है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, माने कि हमारी स्रोत भाषाएं और लक्ष्य भाषाएं इनका ख्याल रखना चाहिए। भारत की स्रोत भाषाएं करीबन 22 है लेकिन हमारी लक्ष्य भाषाएं उससे दुगुनी होनी चाहिए। भाषाओं का एक शास्त्र बताता है कि जिस स्रोत भाषा के साथ ढेर सारी लक्ष्य भाषाएं जुड़ती है वह ढेर सारी लक्ष्य भाषा ही उसकी भाषिक शक्ति होती है। उस तुलना में हमें बहुत काम भविष्य में जाकर करना है, इसका मैं एहसास आपको इस बहाने दोस्तों देना चाहता हूं। भारत में आजकल आपने देखा होगा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जैसे वे प्रधानमंत्री बने तब से किसी योद्धा की तरह वो अनेक देशों की सवारी कर रहे, सफर कर रहे, यात्रा कर रहे, और वो जाते हैं पहले हमारे पंत प्रधान जाते थे, मैं उनकी क्षमा मांगकर आपको बताना चाहूंगा कि एक जमाना था कि हम दुनिया के पास मांगने के लिए जाते थे। अब भारत बदल गया है दोस्तों, अब भारत देने के लिए जा रहा है। परसों हमारे राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी इसराइल और पैलेस्टाइन गए। अकेले पैलेस्टाइन में उन्होंने $50 लाख का निवेश का ऐलान किया। ये हमारी शक्ति है दोस्तों। आने वाले दिनों में भारत याचक नहीं होगा, दाता होगा। ये हमारा जो दातृत्व है, ये हमारे अब जो स्थिति हो गई है महासत्ता बनने की, वो महासत्ता सिर्फ अर्थ की नहीं होती, महासत्ता दोस्तों संस्कृति भी और भाषा और लिपि शक्ति की भी एक महासत्ता होती है। तो विशेषकर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में हमें बहुत काम करना है। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, शॉर्ट मैसेजेस है, वेबसाइट है, वेब रेडियो है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन और ई गवर्नेंस की जो बात होती है, जैसे ई मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ई एजुकेशन है। कितने क्षेत्र में आपको बताऊं कि जो हमारी भाषा प्रौद्योगिकी के ऐसे अस्पर्शित क्षेत्र है कि जिसमें हमने बहुत प्राथमिक काम किया हुआ है। तो भविष्य में जाकर हमारे स्वरूप निर्धारण में इन सब बात को हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे हिंदी के सर्च इंजिन आपको विकसित करने होंगे, पोर्टल्स विकसित करने होंगे, हिंदी विकिपीडिया आपको विकसित करनी होगी, तब जाकर हिंदी ज्ञान भाषा और विश्व भाषा होने की संभावना है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारे देश ने दो ऐलान कर दिए है। एक है डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया क्या है? ये भाषा प्रौद्योगिकी के लिए वरदान है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात हमारे प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की करते हैं। मेक इन इंडिया माने कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे उत्पादन है कि जिनको सिर्फ भारत बनाता है, तो उसके बलबूते पर हम अपने भाषिक साम्राज्य का विस्तार भी कर सकते हैं। जैसा किसी समय चीन और जापान ने उद्योग के जरिए अपनी भाषा का विस्तार किया, आने वाले दिनों में उस नीति को अपनाते हुए हमें भी जो आने वाली वर्चुअल यूनिवर्सिटीज होगी, वर्चुअल व्यवहार होगा हमारा आभासी दुनिया का, उसमें भी भाषा प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा काम करने की संभावना है। तो ये स्वरूप निर्धारण में ये छोटी छोटी बातें जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे दोस्तों, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले दिनों में इस पर कुछ सोच करेंगे। भाषा प्रौद्योगिकी के इस विस्तार क्षितिज को मैंने समझाया, ये जो स्वरूप निर्धारण हमारे जहन में है, इसको यदि भविष्य में हकीकत में उतारना है तो हमें क्या क्या करना होगा। मुझे आप प्रश्न करेंगे कि ये ठीक है कि आप कहते हैं, हमें मंजूर है, लेकिन करना क्या है? भाषा प्रौद्योगिकी का विकास करना माने क्या करना है? तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए पहली बात है कि शब्द संचयन। ऐसा बताया जाता है कि भाषा का विकास जैसे मनुष्य का होता है, कि हम करोड़ोंपति किसे कहते हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं, वैसे भाषा समृद्धि की बात किस बात पर निर्भर होती है? तो तुम्हारे पास कितने शब्द है, तुम्हारे पास कितने शब्द है माने छोटी छोटी बातों के लिए आपके पास शब्द है या नहीं। जैसे अब सॉफ्टवेयर शब्द है, देखो कि हमने हिंदी में इसके लिए प्रतिशब्द नहीं बनाया है, हार्डवेयर के लिए हमने प्रतिशब्द नहीं बनाया है। आने वाले दिनों में हमें शब्द बनाने होंगे, उनका प्रयोग करना होगा और प्रयोग करके अपनी शब्द संपदा हमें बढ़ानी होगी। ये कब होता है? कोई भी भाषा की शब्द संपदा और शब्द संचय कब बढ़ता है? तो हमें हरेक व्यक्ति को, हरेक प्रयोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि छोटे छोटे शब्दों का वो इजहार करे। जैसे इसके पूर्व मैंने दिए हुए व्याख्यानों में इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत बहुत सारे नए शब्द मैंने बनाए और उसका प्रयोग किया। मुझे उम्मीद है कि उसमें से 10 लोग भी यदि उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा विज्ञान में दोस्तों एक थ्योरी मानी जाती है, एक सिद्धांत माना जाता है कि वह कैसा होता है, अणु विभाजन जैसा, कि एक शब्द का, नए शब्द का प्रयोग करो और उसको प्रकाशित करो, प्रसारित करो, तो एक शब्द हजार लोग सुनते हैं। हजार लोग जो शब्द सुनते हैं वे जब उसका उच्चारण करते हैं तो 1,00,000 उसके श्रोता होते हैं। 1,00,000 शब्दों का उच्चारण होता है तो 1,00,000 उसके श्रोता हो जाते हैं। ये अक्सर गुना होता है, छेद नहीं होता उसका। प्रयोग एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों कि वह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। इसको हम कहते हैं कि एटॉमिक रिएक्शन जैसा, म्यूटेशन जैसा ये सिद्धांत होता है। हमारी पुरानी कथाओं में रक्तबीज राक्षस की कल्पना की थी कि उस रक्तबीज को मारना कठिन है। क्यों कठिन था? क्योंकि उस रक्तबीज को मारने का प्रयास कोई करता, उसके खून के जितने कतरे गिरते उतने राक्षस तैयार हो जाते थे। वैसे भाषा की भी बात है दोस्तों कि आप भाषा का प्रयोग करो वो 10 गुना बढ़ती जाते हैं। शब्द संपदा तब बढ़ती है जब भाषा को लेकर। और एक बात है दोस्तों, अटरेंस नाम की चीज बहुत बड़ी होती है। भाषा जिंदा रहती है होने से नहीं दोस्तों, उच्चारण से। उच्चारण से माने, अब मराठी भाषा को ले लो ना, ये कितनी संकरित हो गई आप जानते हो। मैं तो ये मानता हूं कि आज की तारीख में हमारा दिमाग अंग्रेजी बन गया है। हम छोटी छोटी बातों के लिए अंग्रेजी शब्दों का इतना प्रयोग करते हैं कि एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को हमने कैसा बदतर बना दिया है। मेरी पोतों की जो पीढ़ी है, मैं क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से, लेकिन मैं उसका अपराधी हूं, मेरी पीढ़ी उसकी अपराधी है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं मराठी माध्यम में पढ़ा। जब मैं समझदार बना तो मैंने हिंदी को अपनाया, लेकिन मैंने अपने बेटों को तय करके मराठी में उनको लिखाया पढ़ाया। मेरे आगे जाकर वे उच्च शिक्षा में गए और उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं उच्च शिक्षा में गया तो मैं हिंदी पढ़ता गया। मेरे बेटे उच्च शिक्षा में गए, वह अंग्रेजी पढ़ने लगे। अब उनके जो बेटे मेरे घर में पैदा हो गए वो पैदाइशी अंग्रेजी बन गए। माने वो एक तो अंग्रेजी प्ले स्कूल में जाते हैं, अंग्रेजी प्रोग्राम देखते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, गाली भी अंग्रेजी में देते, शट अप कहते वो मेरी पोती मुझे। ये आने वाली पीढ़ी का हमें शट अप करना एक तरह से भाषाई विकास को बंद करना है दोस्तों। लेकिन हमारे तरफ, मैं अक्सर बताता हूं, भारत के सामने अक्सर दोहरे खतरे विद्यमान होते हैं, एक अपने को बचाए रखना और दूसरों पर आक्रमण करना। ये भाषा के साथ भी दोस्तों हमारे साथ एक चुनौती है, इससे भी हमें निपटना है। लेकिन वह है, उसको निपटना है तो अपनी शक्ति बढ़ाओ, शब्द संचयन बनाओ, फिर शब्दानुक्रम का विकास हमें करना चाहिए, व्याकरण का विकास करना चाहिए। व्याकरण एक ऐसी शक्ति होती है कि जो हमारी भाषाई अनुशासन को बचाए रखती है। अब वो जो पोते की बात मैंने बताई, पोते की, वो उसका एक परसों मैंने वाक्य सुना, हैरान कर गया मुझे। वो क्या था कि वो कहने लगी, अजोबा म्यूजियम में सन्नाटा था, अजोबा म्यूजियम में सन्नाटा था। अब देखो, अजोबा मराठी शब्द, म्यूजियम अंग्रेजी शब्द, सन्नाटा हिंदी शब्द। सहज उसकी भाषा त्रैभाषिक है और ये त्रैभाषिक भाषा दोस्तों संकरित भाषा है। भाषा का विकास माने भाषा का संकर नहीं है दोस्तों, भाषा की शुद्धता, भाषा का व्याकरण बना कर रख जो भाषाएं विकसित होती है वह भाषाएं होती है। हमारी मराठी भाषा मराठी नहीं रही। टीवी पर जाकर देखो कितने गलत लिखने वाले लोग पैदा हो गए, ऐसा मुझे लगता है। मैं रेडियो पर देखता हूं कितने गलत उच्चारण। मैं कभी कभी आत्महत्या की बात सोचता हूं ये सुनकर। ये मेरा ये सोचना असल में हमारी भाषिक अस्वस्थता और भाषिक हैरानी होनी चाहिए। जो देश के लोग भाषा के संकर से हैरान होते हैं वे ही अपनी भाषा को बचा कर रखते हैं। इस दृष्टि से दोस्तों जापान, फ्रांस, किसी तरह जर्मनी, ये ऐसे देश है कि तरक्की के बावजूद भी उन्होंने अपनी भाषा को शुद्ध बनाकर रखा है। उनका आदर्श हमें आने वाले दिनों में करना चाहिए। फिर कोश एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमारी भाषा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हमें चुनौती देने वाला क्षेत्र है कि हमारे पास भारतीय भाषाओं के कोश है लेकिन विदेशी भाषाओं के कम है। रूस हिंदी कोश हमारे पास है, जर्मन हिंदी कोश हमारे पास है, कोश है लेकिन दुनिया की सारी भाषाओं के कोश दोस्तों हमारे पास नहीं है। आने वाले दिनों में हमें पेपर कोश नहीं बनाने हैं, हमें ई कोश बनाने हैं कि सीधे हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि उसका उच्चारण भी होगा, उसकी लिखाई भी होगी, उसके कोनोटेशन भी उसमें होंगे और तब जाकर एक शास्त्रोक्त कोश बनाने की बात भविष्य में हमारी भाषा प्रौद्योगिकी को करनी है। भाषांतर और लिप्यंतरण के बारे में मैंने बताया, इसके पहले व्याख्यान में वर्तनी जाचक के बारे में बताया, वाक से पाठ की बात मैंने की, संपादन की बात की, मुद्राक्षर परिवर्तन की बात की, लेकिन ये सब प्रौद्योगिकी के उत्पादन है हमारे भाषा के आने वाले दिनों में, जिसको हम ई प्रोडक्ट कहा करते हैं। ये सारे ई प्रोडक्ट आने वाले दिनों में तीन प्रकार की व्यवस्था से दोस्तों हो सकते हैं। एक हमें ऑप्टिकल डिजाइन तैयार करनी होगी देश की कि जिसके जरिए आधुनिक से आधुनिक तंत्र का विकास हम करेंगे, लेजर टेक्नोलॉजी का हमें विकास करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो महाजालीय व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, मैं कभी कभी हैरान रहता हूं कि सिंगापुर जैसा एक छोटा देश, मैं उसको महान देश मानता हूं। क्यों महान मानता हूं मालूम है? आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राष्ट्र वाईफाई हो सकता है? पूरा सिंगापुर दोस्तों वाईफाई है कि जहां भी जाओ आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो। मैं ये देखता हूं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा है। पिछले हफ्ते मेरे घर का इंटरनेट था वो बंद था, मैं हैरान रह गया, 8 दिन मेरे बेकार निकल गए। तो हमें सेवा और सुविधाओं की शाश्वती भी विकास के सपनों के साथ सोचनी होगी कि पानी का नल है लेकिन पानी नहीं, ये स्थिति कब तक चलेगी? इस पर भी हमें सोचना चाहिए, हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण आने वाले दिनों में करना चाहिए। नहीं तो हम प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, हम सारा संरचनात्मक ढांचा तैयार करेंगे लेकिन न उसमें आत्मा होगी, न श्वास होगा, न पानी होगा, पंच तत्वों जैसा हमारा ये सारा स्वरूप है। इस पर भी हमें, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि हम रास्ते जरूर बनाएं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जब तक डिजिटल हाईवे नहीं होगा तब तक हमारा देश भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई करिश्मा नहीं कर पाएगा। यदि वह करिश्मा आपको करना है तो दोस्तों मैं इस स्वरूप और महत्व की चर्चा में आपको समझाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में डिजिटल इंडिया का सपना देखना माने भाषा प्रौद्योगिकी के विकास का क्षितिज निहारना है। धन्यवाद।